मरकुस बाप छे। यीशु वहां से निकलकर अपने शागिर्दों के साथ अपने वतन को वापस हुए। सबत के दिन यीशु ने यहूदी इबादत खाने में तालीम दी। इनका बयान सुनकर कई लोगों ने ताज्जुब किया और कहा,
इस इल्म व मारिफत को उसने कहां से सीखा है, उसको किसने दिया और उसको ये मोजज़े की ताकत कहां से आई?
ये तो सिर्फ बड़े ही है, इसकी माँ मरियम है। ये याकूब, योसेस, यहूदा और सैमून का भाई है। इसकी बहन यहाँ हमारे साथ है।
उन लोगों ने यीशु को कबूल नहीं किया। यीशु ने लोगों से कहा,
दूसरे लोग तो नबी की इज्जत करते हैं, लेकिन नबी को अपने वतन में और अपने खास लोगों में और अपने ही घर में इज्जत नहीं मिलती।
यीशु उस गाँव में ज्यादा मोजज़े न दिखा सके। उसने अपने हाथों को चंद बीमारों के ऊपर रखकर उनको तंदुरुस्त किया। उसके अलावा उसने कोई मोजज़ा नहीं दिखाया। उन लोगों में अकीदा की बख्तगी न पाकर यीशु को हैरत हुई। तब यीशु ने उन इलाकों के मुख्तलिफ गांव में जाकर लोगों को तालीम दी। यीशु 12 हवारियों को एक साथ बुलाकर उनकी दो दो की जोड़ी बनाकर बाहर भेज दिया। यीशु बदरुओं को कब्जा में रखने का इख्तियार उनको दे दिया। यीशु ने उनसे कहा,
तुम सफर पे जाते वक्त अपने साथ लाठी के सिवा और कोई चीज न लेना, न तोशा और न कोई थैली, और न तुम्हारी जेबों में कोई पैसे रहें। जूतियां पहनो और तुम जिस लिबास को पहनते हो बस वही काफी है। जब तुम किसी घर में दाखिल हो तो उस गांव को छोड़ने तक तुम उस घर में रहो। जिस गांव में तुमको कबूल न करें और तुम्हारी तालीमात का इनकार करें, वहां अपने पैरों की धूल और गर्द को झाड़ दो और उस गांव को छोड़ दो। ये बात उनके लिए इंतबाह की होगी।
शागिर्द वहां से निकलकर दीगर मुकामों को गए और लोगों में तबलीग की और कहा कि अपने गुनाहों से तौबा करो। बदरूहों से मुतासिर बेशुमार लोगों को शागिर्दों ने सेहत बख्शी और कई बीमारों को तेल मरकर सेहतयाब किया। यीशु अब मशहूर हो चुके थे। हेरोदेश बादशाह को इसके मुतालिक मालूम हुआ। चंद लोगों ने कहा,
वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये फिर दोबारा जी उठा है, इसी वजह से वो मोजज़े बताने के लायक है।
फिर चंद लोगों ने कहा,
ये एलिया है,
और दूसरे लोगों ने कहा,
यीशु नबियों की तरह जो पहले गुजर चुके हैं एक नबी हैं।
हेरोदेस बादशाह ने यीशु के बारे में लोगों से कही जाने वाली उन तमाम बातों को सुना और कहा,
यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया है, क्या वो अब फिर जिंदा होकर आया है?
खुद हेरोदेस बादशाह ने यूहन्ना को कैद करने के लिए अपने सिपाहियों को हुक्म दिया था, इसलिए वो यूहन्ना को कैद में डाल दिया। हेरोदेस ने अपनी बीवी हेरोदियास को खुश करने के लिए ऐसा किया। हेरोदियास हेरोदेस के भाई फिलिप्स की बीवी थी, लेकिन बाद में हेरोदेस ने हेरोदियास से शादी कर ली। यूहन्ना ने जो हेरोदेस से कहा था,
ये तेरे लिए सही नहीं है कि तू अपने भाई की बीवी से शादी करे,
इसी वजह से हेरोदियास यूहन्ना से नफरत करने लगी और उसको कत्ल करवाना चाहा, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। हेरोदेस यूहन्ना को कत्ल करवाने के लिए खौफजदा हुआ। लोगों ने यूहन्ना को मुकद्दस आदमी, नेक और शरीफ आदमी समझते थे। ये बात हेरोदेस को मालूम थी, इसी वजह से हेरोदेस ने यूहन्ना की हिफाजत की। हेरोदेस जब यूहन्ना की तबलीग सुनता था तो बेचैन हो जाता था। इसके बावजूद इसकी तालीमात को वह पूरे इत्मीनान और खुशी से सुनता था। एक मर्तबा यूहन्ना को मार डालने का सुनहरा मौका हेरोदियास को मिला। उस दिन हेरोदेस की सालगिरह का दिन था। हेरोदेस ने हुकूमत के अहम अहदादारों को और फौज के सिपा सालारों को और गलील के कायदीन को खाने की दावत पर मादा किया था। हेरोदियास की बेटी उस खाने की दावत में आकर कस करने लगी। हेरोदेस और उसके साथ खाना खाने वालों को बहुत खुशी हुई। उस वक्त बादशाह हेरोदेस ने उस लड़की से वादा किया और कहा,
तुझे जो मांगना है वो मांग ले, मैं तुझे अता करूँगा।
फिर उसने वादा लेकर कहा,
अगर मेरी सल्तनत से आधी सल्तनत का मुतालबा भी करे तो मैं तुझे दूंगा।
लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर पूछा,
मैं क्या मांगू?
उसकी माँ ने कहा,
बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर मांग।
वह लड़की तेजी से बादशाह के पास गई और कहा,
बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर एक तबक में इसी वक्त दे।
हेरोदेस बहुत रंजीदा हुआ, लेकिन उसने लड़की से वादा किया था कि वह जो भी मांगेगी उसको दिया जाएगा। सब लोग जो हेरोदेस के साथ खाना खा रहे थे उन्होंने भी सुना, इसलिए उसने इनकार करना मुनासिब न समझा। बादशाह हेरोदेस यूहन्ना का सर काट कर लाने के लिए एक सिपाही को रवाना किया और उसने कैद खाने में यूहन्ना का सर काट कर तबक में रख कर लाया और उस लड़की को दिया। उसने इस सर को अपनी माँ को दिया। इस वाक्ये को यूहन्ना के शागिर्दों ने जान लिया। वह लोग आकर यूहन्ना का जिस्म ले गए और इसको एक कब्र में रख दिया। यीशु ने जिन रसूलों को तबलीग करने के लिए भेजा था वह वापस आए और जो कुछ उन्होंने कहा उन वाकियात को सुनाया। यीशु और उनके शागिर्द एक ऐसी जगह पर थे जहां बेहिसाब लोग आते जाते थे और उनके शागिर्दों को खाने तक के लिए वक्त न रहता था। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा,
मेरे साथ चलो, हम पुरसकून जगह पर जाकर थोड़ा आराम करेंगे।
बस यीशु और उसके शागिर्द कश्ती पर सवार हुए और ऐसी जगह गए जहां लोग नहीं थे। उनको जाते हुए कई लोगों ने देखा, उन्हें मालूम था कि वह यीशु ही थे। इस वजह से लोग तमाम करियों से इस जगह आकर उसके वहां आने से पहले ही मौजूद थे। यीशु जब वहां आया तो देखा कि बहुत से लोग उनके इंतजार में हैं। चरवाहे बगैर बकरियों की तरह रहने वालों को देखकर दुखी हुए और उनको कई बातों की तालीम दी। पहले ही देर हो चुकी थी। यीशु के शागिर्द उसके करीब आए और उनसे कहा,
कोई भी शख्स उस जगह पर बसर नहीं करता और बहुत देर हो चुकी है, इसलिए लोगों को भेज दे ताकि वो इतराप व कनाप के बागात और शहरों से खाने के लिए कुछ खरीदे।
लेकिन यीशु ने कहा,
तुम इन्हें थोड़ा सा खाना दे दो।
शागिर्दों ने यीशु से कहा,
उन लोगों के लिए हम हस्ब जरूरत रोटी कहाँ से लाएं? हमें उसके लिए कम अज कम 200 दिनार चाहिए जिससे उन्हें मतलूब गिजा पहुँचे।
यीशु ने शागिर्दों से कहा,
तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ और देखो।
शागिर्दों ने जाकर गिना और वापस आए और कहा,
हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं।
तब यीशु ने शागिर्दों से कहा,
हरी घास पर लोगों से कहो कि कतार बात कर बैठ जाएं।
लोग कतारें बनाकर गिरदा की शक्ल में बैठ गए। हर एक कतार में 50 से 100 तक लोग थे। यीशु ने 5 रोटियां और मछलियां निकाल कर आसमान की तरफ देखा, रोटी के लिए खुदा का शुक्र अदा किया। इसके बाद रोटियों को तोड़कर शागिर्दों को दें और हिदायत की कि उसको लोगों में बांट दें। इसी तरह दोनों मछलियों को टुकड़े करके लोगों में तकसीम करने के लिए अपने शागिर्दों को दिया। तमाम लोग शक्मशीर होकर खाए। उसके बाद लोग जो पूरी रोटियां खा न सके, बची हुई रोटियां और मछलियों को शागिर्दों ने जब एक जगह जमा किया तो उनसे 12 टोकरियां भर गईं। वहां तकरीबन 5,000 लोगों ने खाना खाया। तब यीशु ने अपने शागिर्दों को कश्ती में सवार होने के लिए कहा। यीशु ने हिदायत की कि वह झील के उस पार बैतसैदा जाएं और कहा कि थोड़ी देर बाद वह आएगा। यीशु वहां रुक गए ताकि लोगों को घर जाने के लिए समझाया जाए। यीशु लोगों को रुखसत करने के बाद पहाड़ पर गए ताकि इबादत की जाए। उस रात कश्ती झील के बीच में थी। यीशु अकेले ही जमीन पर थे। यीशु ने कश्ती को देखा जो झील में बहुत दूर थी, और शागिर्द उनको किनारे पर पहुंचाने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहे थे। हवा उनके मुखालिफ सिमत में चल रही थी। सुबह के 3 से 6 बजे के दरमियान यीशु ने पानी पर चलते हुए कश्ती के करीब आकर उनसे आगे निकल जाना चाहा, लेकिन पानी पर चलते हुए जब उनके शागिर्दों ने उसे देखा तो उसे भूत समझा और खौफ के मारे चिल्लाने लगे। तमाम शागिर्दों ने जब यीशु को देखा तो बहुत घबराए, लेकिन यीशु ने उनसे बातें की और कहा,
फिकर मत करो, ये मैं ही हूँ, घबराओ मत।
फिर यीशु उस कश्ती में उनके साथ सवार हुए। तब हवा रुक गई, शागिर्दों को हैरत हुई। 5 रोटियों से 5,000 लोगों के खाने का वाकिया को देख चुके थे, लेकिन अब तक उसके माने समझ न सके, उनके जहन बंद हो गए थे। यीशु के शागिर्द झील पार करके गणेशरथ गांव को आए और कश्ती झील के किनारे बांध दी। वह जब कश्ती से बाहर आए तो लोगों ने यीशु को पहचान लिया, यीशु की आमद की इत्तला दी। इस इलाके में रहने वाले सभी लोग डरने लगे। जहां भी लोगों ने सुना कि यीशु आए तो लोग बीमारों को बिस्तर समेत ला रहे थे। यीशु उस इलाके के शहरों, गांव और बागात को गए। वह जिस तरफ जाते थे लोग बाजारों में बीमारों को बुला लाते थे और यीशु से गुजारिश करते थे कि उनको अपने चगा के दामन को छूने का मौका दें। वह तमाम लोग जिन्होंने उसके चगे को छुआ था वह तंदुरुस्त हो गए।